अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के महू निवासी, वर्तमान में भिलाई में पदस्थ बाल विकास शिक्षक डॉक्टर डी एस शिवडेकर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 6 जून सन 2012 को रिकॉर्ड की गई थी।
रेडियो साई के सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा अभिनंदन। रेडियो साई के इस कार्यक्रम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं डॉक्टर डी एस शिवडेकर जी से, जो कि मध्य प्रदेश महू से आए हैं। डॉक्टर शिवडेकर जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
सही रहो।
इससे पहले कि हम आपसे आपके आध्यात्मिक जीवन के बारे में, आपके साई सेवा के जीवन के बारे में आपसे कुछ प्रश्न पूछें, मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर डी एस शिवडेकर ने मास्टर्स ऑफ वेटनरी साइंस के अंदर में अपना क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है। उसके उपरांत उन्होंने वेटनरी साइंस में ही माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में विशेष अध्ययन भी किया है। वे महू में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मध्य प्रदेश के अंदर में संचालक के पद से निवृत्त हुए। उसके उपरांत उन्होंने हरियाणा के अंदर में इंडोवैक्स प्राइवेट लिमिटेड में जनरल मैनेजर के अहदे से भी वे निवृत्त हुए हैं। बहुत लंबे समय तक वहाँ पर कार्य किया है और इस समय वो बाल विकास के गुरु के रूप में भिलाई में मध्य प्रदेश के अंदर में कार्यरत हैं, भगवान बाबा की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर शिवडेकर जी, हम बहुत प्रसन्न हैं कि आज आप रेडियो साई के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहेंगे कि भगवान बाबा से आपका परिचय किस प्रकार से हुआ और आपने साई संगठन में प्रवेश किस प्रकार से किया और किस सन में किया?
साई रेडियो के प्रबुद्ध श्रोताओं को सप्रेम साई राम। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज इस पवित्र स्टूडियो में उपस्थित हूँ और अपने अनुभवों को आपको बता रहा हूँ। सन 1974 में मैं महू में पदस्थ था और वहाँ पर आदरणीय डॉक्टर वी के गोकाक वहाँ पधारे हुए थे। उन्होंने महू समिति का उद्घाटन किया। जब उद्घाटन किया तब मैं समिति का सदस्य नहीं था, मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में वहाँ पर बुलाया गया था। कार्यक्रम जहाँ चलता रहा उसके बीच में अनाउंसमेंट हुए, हमने इस शहर के कुछ लोगों को कोऑप्ट किया है सदस्य के रूप में, तो मेरे नाम की घोषणा हुई कि मुझे साई समिति का सदस्य के रूप में कोऑप्ट किया गया है। तो मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं इस प्रकार से आमंत्रित किया गया इसका सदस्य बनने के लिए। मैंने बाबा को चरण स्पर्श किए, गोकाक साहब को प्रणाम किया और मैंने इस संगठन में का काम करना शुरू किया। और फिर समिति में जाना शुरू किया, भजन हो रहे थे, काफ़ी भीड़ होती थी। हमारे कन्वीनर साहब थे सेठी साहब, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अभी आपको ड्यूटी देते हैं, जितने श्रोता आते हैं उनके जूते चप्पल आपको देखना है।
अच्छा, तो ये पहले आपको ड्यूटी मिली वहाँ पे कि जितने भी भक्तगण आएंगे समिति में भजन के लिए उनके जूते और चप्पलों को सही तरीके से लगाने की?
तो मुझे इसमें कोई ऐसा रंज नहीं हुआ, मुझे लगा कि भाई जो भी काम भगवान ने दिया हुआ है
जी
उसको करना चाहिए। तो मैं सब लोग भजन गाते रहे, आरती करते रहे हैं, वहाँ पर प्रवचन सुनते रहे और मैं जूते देखता रहा। ऐसा बहुत दिन तक चला और जैसे मैं मेरे परिचय में बताया गया मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, इसलिए जानवरों से डरता नहीं हूँ। तो एक दिन मैं साइकिल से घर पे आ रहा था तो दो सांड आपस में लड़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो सांड तो लड़ते रहते हैं, उनका काम है, मेरा क्या उनसे लेना देना। तो मैं अपना साइकिल से चलता रहा। तो उतने में से एक सांड ने जैसे कोई टारगेट बनाकर किसी के पीछे दौड़ा जाए, ऐसा सांड मेरे पीछे दौड़ा। मुझे भान हो रहा कि मेरे पीछे सांड दौड़ रहा है, पर मुझे कोई भय नहीं लगा। वो सांड ने आके टक्कर भी लगाई, पर टक्कर लगाई वो साइकिल के पीछे कैरियर था, उस कैरियर को सारा का सारा फोर्स लगा और साइकिल नीचे में गिर पड़ा। पर सांड ने मुझे कुछ नहीं किया, मुझे चोट भी नहीं आई, साइकिल में कुछ नुकसान नहीं हुआ। शरीर भीड़ इकट्ठा हो गई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ लोगों ने मुझे पूछा तो मुझे पता लगा कि मैंने जूते चप्पल की रखवाली की, उसका सारा का सारा मुआवजा स्वामी ने मुझे दे दिया।
बहुत सुंदर।
और मैं इसी कि स्वामी ने मुझे देवन दान दिया है, तो मैंने उसी दिन अपने जीवन को स्वामी को समर्पित
कर दिया। आपने कि भगवान बाबा हमारी रक्षा करेंगे जब हम उनकी सेवा करेंगे तो।
और न केवल मैंने, मेरे साथ में मेरे पत्नी ने भी।
अच्छा।
वो संस्कृत की विशेष उनका अध्ययन है और वो स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं।
अच्छा।
तो हम दोनों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और हम इस संगठन में दोनों साथ में काम करने लगे।
तो संगठन में जुड़ने के बाद में किस क्षेत्र में अपना विशेष आपने ध्यान दिया?
ऐसे हुआ 1974 से लेकर जब तक मैं संचालक के पद पर वहाँ पर कार्यरत था, 20 साल लगभग, 74 से 94 तक मैंने मध्य प्रदेश में ही सेवा की।
अच्छा।
फिर बाद में 94 के बाद में मुझे इंडोवास प्राइवेट लिमिटेड में काम करने का मौका मिला हिसार में, तो 16 साल लगातार मैंने फिर हिसार हरियाणा में काम किया। वहाँ से सेवारत होने के बाद फिर से मध्य प्रदेश में आया हूँ, आजकल भिलाई में हूँ। हमने अपना सेवा का क्षेत्र जो ढूंढा वो बाल विकास, एजुकेशन ह्यूमन वैल्यूज, एजुकेयर, स्टडी सर्कल, जगह जगह गायत्री के हवन करवाना देहातों में, और हमारे कुछ पारंपरिक व्रतों पूजा होती है उसको संगठित करना, ऐसे कार्यक्रम में हम विशेष रूप से रुचि लेने लगे।
तो पर आपका, आप वेटरनरी डॉक्टर होकर आप अब इन कार्यों के अंदर में जब आप संलग्न हुए तो कुछ आपको मुश्किलात नहीं हुआ? गीता को दोबारा पढ़ना, उसको समझो, लोगों को समझाना, रामायण को पढ़ना या यज्ञ करवाना, उसकी प्रेरणा कैसे मिली आप?
बात ऐसी हुई कि जब संगठन में आए तो बड़े बड़े विद्वानों के साथ में फिर परिचय हुआ, उनके प्रवचन सुने। तो एक बार ऐसे प्रवचन सुन रहे थे भोपाल में, हमारे ट्रस्ट के एक कन्वीनर थे, बाबा के परम भक्त थे, बाबा के परम सखा जैसा उनका संबंध था। तो एक दिन बोल दिया उन्होंने, और बात मुझे बहुत गहरी लगी वो।
अच्छा, अंतःकरण में उतर गए जैसे।
उन्होंने कहा कि यू गिव मी योर अवेलेबिलिटी, आई विल गिव यू एबिलिटी।
ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल।
कि तुम अपना समय मुझे दो तो क्षमता मैं दूंगा।
अच्छा।
मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे मुझे मंत्र मिल गया हो। जैसा आपने मुझसे कहा कि मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, साइंस मेरा विषय है, अध्यात्म में मेरी विशेष रुचि नहीं रही, पर जब मैंने काम देना शुरू किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो जैसे मुझे कोई प्रॉम्प्टिंग कर रहा है, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, प्रवचन पढ़ो, इस प्रकार से धीरे 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 करके मैंने अपने क्षमता को इसमें मैं बढ़ाता रहा और स्वामी ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी इस काम को करने के लिए। दूसरी प्रेरणा मुझे मिली जिसमें मेरा स्वार्थ है, वो स्वार्थ ऐसा था कि जब मैं प्रवेश किया तब मेरी उम्र 30-35 साल की थी, बच्चे छोटे छोटे थे, और बच्चों में अच्छे संस्कार भी होना चाहिए, उनका करियर भी है, हर माता पिता की यही चिंता होती है। तो बाबा ने एक जगह प्रवचन में ऐसा कहा कि यू लुक टू माई चिल्ड्रन, तुम बाल विकास के बच्चों को देखो, यू लुक टू माई चिल्ड्रन, आई विल लुक टू योर चिल्ड्रन।
आप हमारे बच्चों का, बाल विकास के बच्चों का ख्याल करिए और भगवान बाबा हमारे बच्चों का ख्याल करेंगे।
मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता सौदा है ये। तो मैंने फिर उसको बहुत प्रैक्टिकल दिया कि स्वामी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर ले ली, उस हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये बाल विकास के कार्यक्रम में लोग जी जान से जुड़ गए, उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली। ये कार्यक्रम स्वामी ने 1969 में बाल विकास के माध्यम के नाम से लेना शुरू किया। और स्वामी की विशेषता ये रही कि कोई कार्यक्रम एकाएक नहीं देते थे, वो देखते थे कि किस चीज़ का एक्सेप्टेंस होगा। स्वामी ने 14 साल तक स्वयं की घोषणा नहीं की, स्वामी ने 14 साल के बाद जब देखा माहौल तब घोषणा की कि मैं सत्य साई बाबा हूँ। तो स्वामी का घोषणा करने का भी एक तरीका होता था,
एक समय, एक
तो स्वामी ने 1969 में सारी डिवोटीज के बच्चों के लिए बाल विकास शुरू किया। और फिर जब उसका एक्सेप्टेंस देखा तो स्वामी ने 1981 में इसका विशाल रूप दिया, जिसका उन्होंने एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यू नाम रखा, जो सबको पढ़ाया जा सके, जो चाहे सत्य साई बाबा का भगत हो या नहीं हो, स्कूल में पढ़ाया जा सके। इस प्रकार से उसका एक ढांचा बना दिया। उससे उसके साथ भी हम परिचित हो गए। फिर स्वामी ने और कुछ साल के बाद में जब एक्सेप्टेंस देखा, न केवल भारतवर्ष में, सारे दुनिया में, इसको सत्यसाई एजुकेशन कहते हैं, सत्यसाई एजुकेशन के हिसाब से जब देखा तो स्वामी ने सन 2001 में इसका विराट रूप दे दिया, एजुकेयर। एजुकेयर को मैं ऐसा समझता हूँ, देखिए चार वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, चार वेद तो है, पर ये वेद सैद्धांतिक है
जी।
ये वेद सैद्धांतिक है, आप इसके गहराई में जाओ, गहराई में जाके आप समझो, ये आपकी क्षमता है, ज्ञान तो सारा का है पर प्रयास सारा आपका है। और स्वामी ने एजुकेट कैसे कर दिया, सारे वेदों में जितने सूत्र है इसको प्रत्यक्ष आचरण में कैसे लाओगे, ये सारी की सारी बातें स्वामी ने बहुत सरल करके एजुकेयर के माध्यम से की। हम समझ नहीं रहे कि स्वामी ने विश्व शांति की कुंजी हमारे हाथ में सौंप दी कुछ नहीं करने का, केवल आपके पांच ज्ञानेंद्रियों का ठीक ठीक उपयोग करो, आंख अच्छी देखे, कान अच्छा का सुने, हाथ अच्छा काम करें, आप पंच ज्ञानेंद्रियों का अच्छा उपयोग करो, विश्व शांति अपने आप हो जाएगी। स्वामी ने इतना गहन बात इतने सारे तरीके से एजुकेयर के माध्यम से बना, इस बात को बहुत कम लोग समझ रहे हैं।
बहुत सुंदर कहा आपने कि आपने जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं अगर उनका ही पूर्णतः सदुपयोग हम करें और उन्हें पवित्र रखें तो वही हमारा एजुकेयर है, उसे हमारा ही नहीं तब्दीलन होगा बल्कि पूरा विश्व परिवर्तन कर सकता है। बहुत सुंदर बताया आपने। पर आपने ये तीन चीज़ें बताई, एक तो आपने कहा बाल विकास के अंदर में जो एक हमारा विशेष कार्यक्रम है, एक EHV है, एक एजुकेयर है, ये कुछ श्रोताओं के मन में ये संदेह उठ सकता है क्या ये अलग अलग हैं या क्या ये एक ही चीज़ है या एक के अंतर्गत दूसरा आता है, किस प्रकार से आप समझाना चाहेंगे श्रोताओं को?
स्वामी ने स्वयं को सनातन सारथी कहा कि मैं वो श्री कृष्ण हूँ, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कह दिया भगवद गीता में, सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम च वे अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादम प्रवितामहम। इस श्लोक को थोड़ा गहरे से समझो तो सारा का सारा बाल विकास का सारा फिलॉसफी समझ में आएगा। स्वामी कह रहे अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अरे बच्चों को देना है सबसे श्रेष्ठ चीज दो ना, छोटी मोटी चीज क्यों दे रहे हो, जो विद्याओं की विद्या है वो अध्यात्म विद्या को दो ना, उसको क्यों उनको वंचित कर रहे हो, उसका फायदा क्या होगा। वादम प्रवितामहम, कभी ऐसा वाद होगा ना कि कौन सी शिक्षा अच्छी है, तो इसी बात की जीत होगी कि अध्यात्म शिक्षा सबसे अच्छी है, ये सारे कैसे गीता के सूत्र से दिया। और ए जगह गीता के तारीफ में ऐसा कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे या सर्व पद्मनाभस्य मुख पद्मे मिश्रिता। ये गीता जो दी है पूजा करने के लिए दी है, गीता सुगीता कर्तव्य हाँ काम करने के लिए दी हुई है, एजुकेट काम करने के लिए दिया है, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे, अरे बहुत सारी किताब पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ये गीता का ही अध्ययन करो, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तर ही या सर्व स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो प्रकट हुई है इससे ज्यादा और क्या चाहिए।
ठीक बात,
ये बाल विकास ये ऐसा ही है। शुरुआत में स्वामी ने 1969 में डिवोटीज के बच्चों के लिए बाल विकास किया, कुछ श्लोक रखे, कुछ उस भजन लिख रखे, कुछ उन्होंने कहानियाँ रखी, कुछ गेम्स रखे, इस प्रकार से कहा स्वामी ने कहा कि बच्चों को पढ़ाओ, देखो फिजिक्स पढ़ाना आसान है, केमिस्ट्री पढ़ाना अच्छा आसान है, अलजेब्रा पढ़ाना आसान है, अध्यात्म पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, और बच्चों को ये 5-6 साल का बच्चा है उसको कैसे पढ़ाएंगे। स्वामी ने टेक्निक दिया, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, देयम धेयम श्रीपति रूपयस्तम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बाबा ने कहा बच्चों के साथ गाओ, उनके साथ खेलो, उनको कहानी बताओ, उनका ध्यान लगाओ। ये सारी के सारी टेक्निक, पांच टेक्निक बाबा ने दी और हमारा 1969 में बाल विकास शुरू किया। 1969 से लेकर 1981 तक स्वामी ने लगभग 12 साल तक एक एक्सपेरिमेंट किया, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। भारतवर्ष में भी बाहर में भी स्वामी ने कहा कि केवल डिवोटीज तक है, क्यों इसको फैलाओ
जी।
इसको फैलाओ। स्वामी ने 1981 में एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज शुरू कर दिया, जो सारे के सारे स्कूल्स में हम लागू कर सके। और विशेष रूप से उसमें व्याख्या होने लगी कि सत्य क्या है, सदाचार क्या है, शांति क्या है, प्रेम अहिंसा क्या है, इस प्रकार से विशेष विवेचन लेना शुरू किया। और ये बड़ा पॉपुलर सी बात हो गई 1981 के साथ बाद में। और फिर स्वामी ने 2001 में इसका बहुत विशाल रूप दिया, जिसको हम लोग एजुकेट कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, ये गंगा जी गंगोत्री से निकली और गंगा सागर में जाके मिली, विशाल हो गई। कहाँ का जल पवित्र है, कहाँ का जगह पवित्र नहीं है,
दोनों ही
सब जगह पवित्र है। इस प्रकार से इसमें भेदभाव करना मुश्किल है। ये सारी की सारी बात एक ही है। ये विशेष ये प्रश्न स्वामी से पूछा भी गया था 2001 में, स्वामी ने अच्छा उत्तर दिया है। ये सारी की सारी स्वामी एक है, इसका मुख्य सूत्र है अध्यात्म सूत्र ही है।
अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के महू निवासी डॉक्टर डीएस शिवडेकर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत की गई थी। टीम रेडियो साई की ओर से डॉक्टर साहब से वार्तालाप कर रहे थे डॉक्टर दीपक आनंद।